ॐ नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ॐ नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ॐ नमो भगवते चैतन्य चंद्राय श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या श्रीचैतन्यचरितामृतम् श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या श्रीचैतन्यचरितामृतम् श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या श्रीचैतन्यचरितामृतम्
बोलिए एक दो जन बोलिए
श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या श्रीचैतन्यचरितामृतम्
ठीक है, प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के साथ।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानानजनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववंश श्रीरूपं सग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजी साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो तेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तविंद हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे वंशी विभूषित करा नवनीरदाभार पीतांबर दारुण बिंब फल धरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने आजानुलंबित भुजो कनकावतातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे प्रियो जगत करो करुणायवतारो वंदे हम अनंत अद्भुतेश्वरम श्री चैतन्य महाप्रभु नीचो अपि यत् प्रसादा भक्ति शास्त्र प्रवर्तक
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्तापित प्रति रविवार इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रति रविवार को यहां इस विरार में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन के द्वारा शांति रखे हरि बोल साइलेंस। अब एक घंटे तक एक व्यक्ति के मुख से आवाज नहीं आनी चाहिए और यदि कोई चुप नहीं बैठ सकता है तो कृपया करके बाहर चले जाइए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अपने बच्चों का ध्यान रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो प्रति रविवार को यहाँ पर प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। परंतु आने वाली पूर्णिमा के दिन हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत ही सुंदर उत्सव है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही आज से 523 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। तो आने वाली पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन है। तो उसके उपलक्ष में हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपको कुछ श्रवण कराएंगे। पिछले रविवार को हमने चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में जाना कि महाप्रभु कौन से तत्व है। महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु साक्षात बजेंद्र नंदन कृष्ण ही है। कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर इस कलयुग में अवतरित हुए हैं। तो राधा रानी का भाव लेने के कारण कृष्ण का रंग जो सांवला था वे गोरा हो गया, इसलिए उसे गोरांग भी कहा जाता है, गोरांग महाप्रभु। तो गौरांग महाप्रभु कहिए या चैतन्य महाप्रभु कहिए या केवल महाप्रभु कहिए, सब एक ही है। तो महाप्रभु का आविर्भाव दिन गौर पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन है, इसलिए आज हमारी इच्छा हुई है कि महाप्रभु के लीला के बारे में कुछ श्रवण कराए। चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं, क्योंकि वे साधारण व्यक्ति नहीं, साक्षात भगवान है। और भगवान जो करते हैं वे हमारी तरह साधारण कार्य नहीं करते हैं, भगवान के समस्त कार्य दिव्य होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, गीता में भगवान कहते हैं मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म, मैं जो कार्य करता हूं वह भी दिव्य है। दिव्य का अर्थ होता है, दिवी का अर्थ होता है आकाश। आकाश के नीचे जो नियम है ये नियमों से बिल्कुल परे है। इस संसार के नियमों से परे रहकर जो कार्य करते हैं उसे दिव्य कहा जाता है। तो भगवान जो कार्य करते हैं हमारी तरफ प्रकृति के नियम में फंस करके बंद करके कार्य नहीं करते हैं। भगवान के कार्य अद्भुत होते हैं, दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं। और यदि कोई भगवान के अद्भुत कार्य, भगवान के अद्भुत कर्म को श्रवण करता है तो अपना हृदय पवित्र कर सकता है। भगवान की कथा का श्रवण करने से हमारे हृदय को पवित्र कर सकते हैं, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बाल्य लीला का हम श्रवण करेंगे। यद्यपि एक एक लीला के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, परंतु फिर भी देश काल पात्र अनुसार हम यहाँ पर संक्षिप्त में कई सारी लीलाओं का वर्णन करेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु का जन्म पूर्णिमा के, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हुआ, संध्या के समय पर। और जन्म होते ही चैतन्य महाप्रभु प्रचार करना प्रारंभ कर दिए। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में हरि नाम का प्रचार करने के लिए आए थे। और इस संसार में व्यक्ति जब 20-25 साल का होता है तब प्रचार करता है, परंतु चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही जन्म लेकर ही प्रचार करना प्रारंभ कर दिए। कैसे? कृष्णदास कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तब जब उनकी इच्छा होती थी प्रचार करने की तो जोर जोर से रोने लगते थे। अब साक्षात भगवान है और भगवान को कोई दुख नहीं होता है, परंतु बस जोर जोर से वे रोने लगते थे। और सब लोग चैतन्य महाप्रभु को शांत करने का बहुत उपाय करते थे। कोई खिलौना लेकर आता था, कोई ताली बजाता था, कोई हंसता था, कोई गाता था, परंतु महाप्रभु चुप नहीं होते थे। तब एक दिन चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, किसी की नजर लग गई है, इसलिए एक काम करो, आप सब लोग भगवान का नाम लो। तो जगन्नाथ मिश्रा चैतन्य महाप्रभु के पिता के कहने पर सब लोग हरे कृष्णा हरे राम। ये नाम लेते ही चैतन्य महाप्रभु चुप हो गए, चुप ही नहीं हुए हंसने लगे। तो इस प्रकार से सब लोग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से इस लीला से भगवान के नाम का कीर्तन करने लगते थे। जब जब महाप्रभु की इच्छा होती तो वे रोने लगते और सब लोग बहुत बहुत प्रयास करते। अंत में जब भगवान के नाम से सब लोग कीर्तन करने लगते तो महाप्रभु चुप हो जाते और हंसने लगते। इस प्रकार से दो तीन बार हुआ तो सब लोग को पता चल गया कि इसे चुप करने का एक ही उपाय है, संकीर्तन करो। ये उपाय उस वक्त के लोगों के लिए भी है और आज के लोगों के लिए भी है। महाप्रभु रो रहे थे परंतु भगवान का नाम का कीर्तन करके महाप्रभु हंसने लगते थे। यदि आज भी भगवान को हंसता हुआ देखना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा इस प्रकार से बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु सबको हरिनाम संकीर्तन करवाना प्रारंभ कर दिए थे। चैतन्य महाप्रभु का नाम यह चैतन्य महाप्रभु तो 24 साल की उम्र में हुआ। चैतन्य महाप्रभु का जब नामकरण हुआ तब उनका नाम विश्वंभर रखा गया। नीलांबर चक्रवर्ती जो चैतन्य महाप्रभु के नाना थे उन्होंने विश्वंभर नाम रखा, क्योंकि ये बालक आगे चलकर विश्व का भरण पोषण करेगा, इसलिए इसका नाम विश्वंभर है। परंतु जो वहां की स्त्रियां थी उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। जब इनका नामकरण हो रहा था तो स्त्रियों ने कहा कि ये बालक बहुत ही देखने में सुंदर है, इसलिए प्रायः सबकी नजर इसे लग जाती है, इसलिए इसका नाम, क्योंकि नीम जो होता है कड़वा होता है, तो इसका नाम कड़वे से ही रख दीजिए ताकि किसी की नजर ना लगे, इसलिए आज से इसका नाम निमाई है। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए भी इसका नाम निमाई रखा गया। तो बचपन से इनका नाम निमाई था, चैतन्य महाप्रभु तो आगे चलकर नाम हुआ, तो हम इसे निमाई नाम से ही पुकारेंगे क्योंकि अब बच्चे हैं। तो ये निमाई बहुत ही छोटे थे, चार पैर पर चल रहे थे। एक दिन की बात, जगन्नाथ मिश्रा कुछ काम के लिए बाहर गए थे और माता शची रसोई घर में कुछ भोजन पका रही थी, भोजन बना रही थी ठाकुर जी को अर्पण करने के लिए। उतने में यह निमाई जिस पलने में था वहां से उतरकर चारों पैरों पर चलकर उस आंगन से बाहर आया, और आंगन से बाहर आया तो एक बहुत बड़ा सर्प उस निमाई के पास आया। तो जैसे ही निमाई ने उस बहुत बड़े सर्प को देखा तो सर्प को देखकर आनंदित हो गया और उस सर्प के साथ खेलने लगा। कभी उस सर्प को थप्पड़ मारता था, वे सर्प भी इस निमाई के साथ खेलने लगा। और कुछ देर के बाद वह सर्प कुंडली मारकर बैठ गया तो निमाई उस कुंडली के बीच में जाकर आराम से लेट गए। ये निमाई संसार के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हे संसार के लोगों, आप अपनी बुद्धि से तत्व के द्वारा मुझे नहीं जान सकते, तो लीला के द्वारा समझो। मैं वही शीर सागर में अनंत शेष नाग की सया पर सोने वाला वही विष्णु हूं मैं, इसलिए आज इस सर्व के बीच में मैं सो रहा हूं, जगत के लोगों को उपदेश दे रहे हैं। परंतु उनकी माता शची ने देखा कि यह निमाई घर पर नहीं है, कहां चला गया, तो बाहर आंगन में आकर देखा तो ये सांप के साथ खेल रहा है। तो ये तो जोर से चिल्लाने लगी कि मेरा लड़का मर गया, सांप उसे डंक मार देगा। आजू बाजू के कई लोग एकत्रित हो गए और सची माता दौड़कर गई और अपने बच्चे को वहां से ले लिया। लेकिन निमाय अपनी माता की गोद में जाना नहीं चाहते थे, ये तो फिर भी उस सर्प को पकड़ कर रखे थे, मैं इसके साथ ही खेलूंगा। लेकिन गांव वालों ने कैसे भी करके उस सर्प को छुड़ाया और कैसे भी करके उस सर्प को भगा दिया। नामदास ठाकुर कहते हैं वास्तव में वह सर्प कोई नहीं था, वह सर्प भगवान का ही एक भक्त, भगवान का ही दास, भगवान का सखा, भगवान का ही भाई बलदेव जी अनंत शेष के रूप में आए थे। देखने आए थे कि मेरा भाई किस हालत में है, मेरा भाई कौन सी लीला कर रहा है, उसका दर्शन करने के लिए आए थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बचपन में बहुत सुंदर सुंदर लीला करते थे। बचपन से ही यद्यपि कृष्ण ने भी ऐसी लीला की थी, चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के समान ही लीला की, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने जो लीला की उसमें बहुत सार गर्भित लीला है। इस संसार में कुछ लोग आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं, आत्मा सु परमात्मा। कई बार हम प्रचार करते हैं तो कहते हैं आत्मा सु परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, सब एक ही। परंतु चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही संसार के लोगों को यह उपदेश दिए कि वास्तव में आत्मा और परमात्मा में बहुत अंतर है। यद्यपि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, परंतु फिर भी बहुत अंतर है। अपनी लीला के द्वारा दिखाते हैं। एक समय चैतन्य महाप्रभु निमाय की माता ने शची ने बहुत ही सुंदर पेड़े, जिसे बंगाली भाषा में संदेश कहते हैं, ये बंगाली आइटम स्वीट है, तो आप पेड़े ही समझिए, क्योंकि हम तो यहाँ पर पेड़े से ही परिचित हैं। जो बंगाल के होंगे वो जानते होंगे संदेश क्या होता है। पेड़े जैसा ही होता है, परंतु उसमें शक्कर कम होती है। तो चैतन्य महाप्रभु की माता ने कुछ पेड़े संदेश दिया कि बेटा खाओ, और ये पेड़े देकर चली गई अपने घर पर। और चैतन्य महाप्रभु वो पेड़े न खाकर मट्टी खाने लगे। अब भगवान की आदत है मट्टी खाने की, वे छूटती नहीं है। कृष्ण लीला में आए थे तब भी मट्टी खाए, अरे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तब भी मट्टी खाना नहीं छोड़े। कृष्ण लीला में भगवान ने एक बार मट्टी खाई थी, बलदेव जी ने शिकायत कर दी कि माता कन्हैया ने मट्टी खाई है, यदि आज से अभी से आप उसे मट्टी खाना बंद नहीं करवाओगी तो आगे चलकर उसे पेट में रोग हो जाएगा। माता हाथ में, यशोदा मैया हाथ में लकड़ी लेकर कृष्ण के पास आई, और वास्तव में कृष्ण ने मट्टी खाई थी। कृष्ण ने देखा दूर से मैया आ रही, तो बहुत जल जल वो मट्टी को निगल रहे थे, परंतु अब मट्टी कैसे जल्दी निगला जाए। मैया करीब आ गई और कृष्ण को पूछा कि हे कृष्ण, क्या तुमने मट्टी खाई है? कृष्ण ने तो खाई थी, यदि बोलकर कहे तो मट्टी दिख जावे, इसलिए कृष्ण ने मुंह बंद करके कहा इशारे से कहा कि मैंने मट्टी नहीं खाई है। मैया ने कहा सच सच बोलो, क्या तूने मट्टी खाई है कि नहीं? भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि जब इस प्रकार से यशोदा मैया ने पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया नाहम भक्षितवान अम्बे, हे अम्ब, हे माँ अहम न भक्षितवान, मैंने मट्टी नहीं खाई है। तो मैया यशोदा ने कहा कि तो क्या ये सब तुम्हारे मित्र झूठ बोल रहे हैं? तो कृष्ण ने कहा हाँ मैया, सर्वे मिथ्या भी संशिन, ये सब लोग मिथ्या, ये सब लोग झूठे हैं। मैया यशोदा ने कहा ये सब लोग झूठे हैं और तुम ही हरिश्चंद्र की पुत्र औलाद बनकर पैदा हुए। कृष्ण को लगा कि मैया को मेरे पे विश्वास नहीं है, इसलिए कहा कि यदि सत्य गिरह तर ही, कृष्ण ने कहा कि यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरे मुंह में देखकर देख लो। मैया ने कहा आज तो मैं तेरा मुंह देखकर ही रहूंगी, खोलो जरा अपना मुंह। तब उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला और अपने मुंह में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड और उस अनंत कोटि ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड में एक भारत वर्ष दिखा। उस भारत वर्ष में मथुरा नामक शहर, उस मथुरा में वृंदावन, वृंदावन में गोकुल और उस गोकुल में एक यशोदा और एक कृष्ण का दर्शन किया। मैया यशोदा इस प्रकार से दर्शन करके आश्चर्यचकित हो गई और जो मैया कृष्ण को डांटने के लिए आई थी वही बेहोश होकर गिर गई। भगवान ये बताना चाहते थे कि मैया मैंने अकेले ने मट्टी नहीं खाई है, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड में रहने वाले अनंत अनंत जीव, उस अनंत अनंत जीवों में मनुष्य, साधु, यक्ष, गंधर, किन्नर, ये सभी लोगों ने मट्टी खाई है, मैंने अकेले ने मट्टी नहीं खाई है। भगवान का कहने का यह भाव था। तो वैसे ही यहाँ वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो यहाँ भी मट्टी ही खा रहे थे। यद्यपि मैया ने पेड़े संदेश दिया फिर भी चैतन्य महाप्रभु मिट्टी खा रहे थे। थोड़ी देर के बाद चैतन्य महाप्रभु की माता घर से बाहर आई और बाहर आकर देखा कि ये पेड़े नहीं खा रहे, वे मिट्टी खा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु की माता ने कहा कि तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो, पेड़े खाओ, मैंने तुम्हें पेड़े खाने के लिए दिए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तोतली भाषा में, छोटे से बच्चे तोतली भाषा में कहते हैं, माता ये पेड़े और मट्टी में क्या अंतर है? जिसे लोग कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? माता ये पेड़े और मट्टी में क्या अंतर है आप बताओ। ये मट्टी से ही सभी अन्न फसल होती है, ये मट्टी से ही घास उगता है और वही घास गाय खाती है और घास खाने से गाय दूध देती है और वह दूध से ही ये पेड़े बने हैं। तो अल्टीमेटली ये मट्टी से ही पेड़े बने हैं, तो मट्टी खाओ या पेड़े खाओ क्या अंतर है? इसलिए आप मुझे रोको मत, मुझे मट्टी खाने दो। देखिए ये छोटा सा बालक कितना बड़ा तर्क दे रहा है। तब मैया ने कहा कि बेटे यद्यपि ये पेड़े, ये संदेश मट्टी का ही विकार है, परंतु इसमें बहुत अंतर है। यद्यपि ये पेड़े मट्टी का ही विकार है, परंतु आप पेड़े खाते हो तो आपका शरीर रुष्ट पुष्ट बनता है और यदि मट्टी खाते हो तो आपका शरीर बिगड़ जाता है। महाप्रभु ने मन में कहा कि मैं यही समझाना चाहता हूं जगत के लोग को कि यद्यपि ये आत्मा परमात्मा का ही अंश है, परंतु दोनों में बहुत अंतर है, जैसे मट्टी और पेड़े में अंतर है। परमात्मा विभू है और आत्मा अणु है, अंश है। परमात्मा एक सागर के समान है तो आत्मा उस सागर की एक बूंद है। आत्मा और परमात्मा में बहुत अंतर है। गुणों की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में समन्वय है, परंतु मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अंतर है। एक गरम गरम, मान लीजिए गरम गरम तवी है जिस पर रोटी पकाते हैं, उस गरम तवी पर यदि समुद्र के पानी को डाला जाए तो वह तवी का कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा, कहां डूब जाएगी कुछ पता नहीं। परंतु उस गरम गरम तवी पर समुद्र की एक बूंद को डाला जाए तो छन्न करके जल जाएगी। तो इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में अंतर है। परमात्मा साक्षात भगवान है, आत्मा उसका अंश है। भगवान अपनी लीला से यह दिखाना, आत्मा सु परमात्मा, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये भगवान अपनी लीला से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जैसे कृष्ण ब्रज वृंदावन में मक्खन चोरी करने की लीला करते थे, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में भी चोरी करने की लीला करते थे। किसी के घर पे जाकर चोरी करते थे, किसी के घर पे जाकर किसी बालक को चिमटी भरकर उसे रुला देते थे, किसी के घर पे जाकर जब पति पत्नी सो रहे होते थे तो पत्नी का जो पत्नी की चोटी वो प्रभु जी के कुर्ते के साथ बांध देते थे, और जब दोनों उठते थे तो दोनों की चोटी और कुर्ता इस प्रकार से तकलीफ होती थी। तो बहुत शरारती थे चैतन्य महाप्रभु, बहुत शरारत करते थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी, ब्रज वृंदावन की लीला है, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अक्सर गोपियों के घर में जाकर मक्खन चोरी करते थे, और जब कृष्ण मक्खन चोरी करते थे तो सारी गोपियां कृष्ण को कहती थी कि हे कृष्ण, यदि तुमने हमारे घर पर मक्खन को चोरी किया तो हम तुम्हें थप्पड़ मारेंगे या हम तुम्हें उखल से बंधवा देंगे, इसलिए आप हमारे घर पर चोरी मत करो। इसलिए सारी गोपियां कहती हैं, तो हे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोर दही की मटकी, तो हे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोर दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी, तोहे मैं हूं ग्वालिन बरसाने की, मैं हूं ग्वालिन बरसाने की, तेरी घोंस में नहीं आने की, तेरी घोंस में नहीं आने की, हो तेरो रसता बंद कराए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी, तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी, तो तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी, तोहे काहू दिन दूंगी मत फोड़ दही, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी, तोहे माँ तू यशोदा से कह आई, माँ तू यशोदा से कह आई, घर चल तेरी करेगी पिटाई, यदि इस प्रकार से मेरी मटकी फोड़ते रहे तो मैं यशोदा मैया से कह दूंगी और वे तुम्हारी बहुत पिटाई करेगी, घर चल तेरी करेगी पिटाई, माँ तू यशोदा से कह आई, घर चल तेरी करेगी पिटाई, तोहे उखल तोहे उखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तोहे उखल तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तोहे मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तोहे भयो यनो को तू उत्पाती, भयो अनोखो तू उत्पाती, नेक शर्म तो को नहीं आती, नेक शर्म तो को नहीं आती, तेरी कंस पे खबर कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तेरी कंस पे खबर कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तोहे एक कमरिया कारी तोपे, रत्न जड़ित आभूषण मोपे, एक कमरिया कारी तोपे, रत्न जड़ित आभूषण मोपे, मैं तो चोरी तोयल गाय दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, मैं तो चोरी तोयल गाय दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तोहे मेरी तेरी प्रीति पुरानी, मेरी तेरी प्रीति पुरानी, तुमने मोहन नहीं पहचानी, तुमने मोहन नहीं पहचानी, हो तो ये नैनन बीच बसाए लूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तोहे नैनन बीच मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़। तोहे काहू दिन हाथ लगाए दोंगे, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे तोहे काहू दिन हाथ लगाए दोंगे, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे मत फोड़ दही की मटकी। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ब्रज वृंदावन में गोपियों के घर घर जाकर मटकी फोड़ते थे, रास्ते में मटकी फोड़ते थे, और सारी गोपियां कृष्ण को कहती थी, यदि तुमने हमारी मटकी फोड़ी तो हम यशोदा मैया को कह देंगे। कुछ गोपियां कहती थी, हम कंस को कह देंगे। अरे कृष्ण सारे, यदि मटकी फोड़ना बंद नहीं किया तो हम मथुरा के राजा कंस को कह देगी और वे तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे। तब कृष्ण इतना ही कहते थे, कंस मेरी क्या पिटाई करेगा, करो कंस निर्वंश, मिट दऊ नाम निशानी रे। एक दिन देखती रहना कि कंस नहीं, कंस के साथ सारे फैमिली को सारी नाम निशानी में मिटा दूंगा। तुम कंस की उलाना मुझे दे रही हो, कंस की धमकी दे रही हो। इस प्रकार से कृष्ण और गोपियों के बीच में यह झगड़ा होता था, परंतु वास्तविक गोपियां इस लीला से बहुत प्रसन्न होती थी। अंत में आपने सुना कि कृष्ण तुम हमारे मर्मों को नहीं जानते हो, हम तुम्हें हमारे नयनन पे बसा लेंगे, अंत में यही कहा गोपियों ने। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी भगवान कृष्ण की तरह ही, क्योंकि वही है जो द्वापर में लीला किए, वही कलयुग में किए, बहुत सुंदर लीला किए। एक समय की बात है, चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे थे, अपने मित्रों के साथ गंगा नदी में स्नान करने गए। तो स्नान करने गए तो उस वक्त कन्याओं के लिए व्रत चल रहा था, जया पार्वती व्रत या कोई व्रत होगा। तो अक्सर कन्याएं जो होती हैं वह अच्छे पति प्राप्त करने के लिए व्रत रखती हैं, कई दिनों का व्रत रखती हैं। कभी कभी प्रश्न होता है, कन्याओं के लिए व्रत है क्या, पुरुषों के लिए नहीं है? हमारे भारतवर्ष में देखा गया है कि लगभग सभी कन्याएं अच्छे पति प्राप्त करने के लिए व्रत रखती हैं। एक आचार्य को पूछा गया कि क्यों केवल कन्या को ही व्रत रखने के लिए कहा गया, पुरुषों को नहीं? तो उसने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि हमारे इस भारतवर्ष में स्त्रियां बहुत अच्छी हैं, मर्यादाशालिनी है, मर्यादा वाली हैं, परंतु पुरुषों का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए पुरुषों को व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्त्रियां तो बहुत अच्छी रहती हैं, परंतु स्त्रियों को व्रत करने की आवश्यकता है ताकि अच्छा भक्त पति हमें मिले। तो कई सारी छोटी छोटी कन्याएं व्रत रहती थी और उस व्रत में गंगा की पूजा और देवी देवताओं की पूजा करने के लिए गंगा नदी के तट पर आती थी, और गंगा नदी के तट पे आकर देवताओं को भोग लगाती थी, अगरबत्ती दियाबत्ती इत्यादि करती थी, गंगा जी की भी आरती करती थी। तब उस वक्त चैतन्य महाप्रभु, जब वो कन्याएं आरती इत्यादि दीपक और भोग प्रसाद लगाती थी, तब चैतन्य महाप्रभु उसके सामने आकर बैठ जाते थे कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो, यदि अच्छा पति चाहिए तो ये सबको छोड़ो और मेरी पूजा करो। ये छोटा सा बालक है। और कभी कभी कोई कन्या किसी देवी देवताओं को कुछ भोग लगाती थी तो आंख बंद करके भोग लगाती थी तो चैतन्य महाप्रभु वहां जाकर वो भोग ही खा जाते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक कन्या को तो यह कह दिया कि तुम किसकी आरती करते हो, मेरी आरती करो, मेरी पूजा करो, ये गंगा यमुना और ये शिव जी की आरती करने से कुछ नहीं मिलेगा। गंगा यमुना दासी मोर महेश किंकर, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे तुम जिसकी पूजा करते हो ये लोग मेरे घर पे झाड़ू पोता मारते हैं। गंगा यमुना दासी मोर, ये गंगा और यमुना कौन है? ये मेरी दासी है। गंगा गंगा जल क्या है? भगवान विष्णु जिस क्षीर सागर में शयन करते हैं उस क्षीर सागर में भगवान विष्णु के चरण का धोवन है गंगा, और यमुना भगवान की पटरानी है। तो कहती है गंगा यमुना की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, ये सब तो मेरी दासियां हैं। और ये महेश, ये शिव जी की पूजा कर रहे हो, ये तो किम क्या करूं प्रभु आपके लिए, क्या करूं पूछता रहता है मुझे। महेश किम कर, ये महेश, ये शिव जी किम कर, मेरा किम कर नौकर है। अरे ये सच बात है, गंगा जमुना दासी मोर महेश किंकर, ये सब लोग मेरे दास हैं, इसलिए पूजा मेरी करो, ये लोग की मत करो। ये लोग भी आपको कुछ देते हैं तो मेरे पास आते हैं मांगने के लिए। अब ये छोटा सा बालक इस प्रकार से बोल रहा है, सबको लगता है अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा अपराध कर रहा है ये, तो शिव जी का अपराध कर रहा है, गंगा जी का अपराध कर रहा है, यमुना का अपराध कर रहा है। वे लोग नहीं जानते थे कि यही कृष्ण है, परंतु ये सब लोग कान में उंगली डालते थे। कुछ लोग वहां से भाग जाते थे और कहते थे मेरी पूजा करो, मैं वर देने वाला हूं। और वास्तव में यह अच्छा पति चाहिए, कुछ भी हमारी आकांक्षा हो तो भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए, क्योंकि यदि देवी देवताओं के पास जाते हैं तो देवी देवता भी भगवान कृष्ण से शक्ति लेकर देते हैं। सृष्टि स्थिति साधन शक्ति रेखा छाए वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छान रूप मई चेष्टते सा गोविंद मादि पुरुषम। उस गोविंद से, भगवान कृष्ण से शक्ति लेकर दुर्गा देवी और इस संसार के देवी देवतागण कुछ वरदान देते हैं। तो उससे अच्छा है वाया वाया न होते हुए डायरेक्ट पार्टी हो जाए, डायरेक्ट ही भगवान से हम मांगे। भगवान कहते हैं मुझसे मांगो, और यदि आप मुझसे मांगोगे, मुझे प्रसन्न करोगे, तो मेरी प्रसन्नता से, मुझे प्रसन्न करने से सभी देवी देवतागण प्रसन्न हो जाएंगे। यथा तरो मूल निशेच नैन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा, जिसे पेड़ की जड़ में पानी डाल देने से पेड़ के पौधे में और पत्ते में पानी पहुंच जाता है, वैसे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने से सभी देवी देवता और सभी ऋषि मुनि सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य भजन साधन करना है तो कृष्ण का। मैं नहीं कह रहा हूं किसी देवताओं के मंदिर में जाना बंद कर दो, देवतागण पूजनीय है और सभी देवताओं के मंदिर में जाकर प्रणाम करना चाहिए, परंतु भक्ति यदि करनी है तो कृष्ण की करनी चाहिए। ये भगवान अपनी लीला से बता रहे हैं, गंगा यमुना दासी मोर महेश किंकर, ये सब लोग मेरे दास हैं, इसलिए मेरा भजन करो। ते सब कन्याएं इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सुनकर कुछ भाग जाती थी, कुछ कान बंद कर देती थी, कुछ चैतन्य महाप्रभु को डांटती थी। और जो जो महिलाएं, जो कन्याएं भाग जाती थी, चैतन्य महाप्रभु उसके पीछे पीछे भागते थे, अरे रुको कहां भाग रही हो। और जब वे उसके वो कन्याएं चैतन्य महाप्रभु उस बालक के हाथ में नहीं आती थी तो चैतन्य महाप्रभु उसे श्राप देते थे, यदि तुम मेरी आरती नहीं करती हो, यदि तुम वो भोग मुझे नहीं देती हो, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें बूढ़ापति मिले, तुम्हें ऐसा पति मिले जिसका मुंह बिल्कुल टेढ़ा हो और वे बहुत मोटा हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तो उस बालक के मुख से श्राप सुनकर वह कन्याएं रुक जाती, यदि हम नहीं रुकेंगे तो ये श्राप दे रहा है। तो रुक कर कहते बोलो क्या चाहिए तुम्हें, तो वो कहते थे आपकी थाली में जो प्रसाद है दे दो मुझे और मेरी आरती करो। तो महाप्रभु बचपन में ये बहुत ही सुंदर सुंदर लीला करते थे। कुछ कुछ कन्याएं सची माता चैतन्य महाप्रभु की माता के पास आती थी और शिकायत भी करती थी कि तुम्हारे बालक का उत्पात बहुत बढ़ गया है, तुम अपने बालक को समझाओ, निमाय को समझाओ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की तो बहुत बहुत लीला है, परंतु समय हो चुका है। तो चलो एक लीला कह देता हूं, लीला तो बहुत बड़ा लिस्ट में, मैं केवल यहां पर इंडेक्स लेकर बैठा हूं। एक लीला दो लीला ऐसी 13 लीला यहाँ पर नाम लिखा है। एक लीला चैतन्य महाप्रभु की श्रवण करके हम अंत करेंगे। चैतन्य महाप्रभु की बहुत बहुत लीलाएं हैं, एक लीला मैं आपको श्रवण कराता हूं। चैतन्य महाप्रभु अच्छे घर के जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी के पास पर्याप्त धन था, इसलिए जगन्नाथ मिश्रा ने उस बालक के गले में सुंदर सोने का चेन, सोने का नेकलेस पहनाया था। हाथ में सोने के कंगन थे, पांव में भी लगे हुए थे। और चैतन्य महाप्रभु उस वक्त 3-4 साल के होंगे, तो यह सोने के गहने पहनकर वहां पर अपने घर के बाहर घूम रहे थे। तो घूम रहे थे तो घूमते घूमते किसी चोरों की दृष्टि चैतन्य महाप्रभु के ऊपर पड़ी, और दोनों चोरों ने आपस में देखा कि इसने गहना पहना है, और यदि गहना निकालेंगे तो ये बालक चिल्लाएगा, रोने लगेगा, सब लोग यहाँ पर जमा हो जाएंगे। इसलिए काम करते हैं, इस बालक को ही उठा कर लेकर जाते हैं। अब ये दो चोरों को क्या सोची, ये महाप्रभु भगवान को उठाने की सोच रहे हैं। इसे ये संसार में और कोई चोरी करने के लिए नहीं मिला, भगवान की गले से चोरी करने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन वे भी धन्य हो जाएंगे भगवान के को लेकर। तो दोनों प्लान बनाए कि तुम 4-5 चॉकलेट लेकर आओ, बालक तो चॉकलेट के ही भूखे होते हैं, 2-3 चॉकलेट दे दो तो वे खुश हो जाते हैं। तो ये गए और ये बालक निमाए तो घूम रहे थे, तो घूमते घूमते कहा कि यहाँ पर आओ, ये देखो चॉकलेट। दोनों चोरों ने दिखाई चॉकलेट। अच्छा, ये चॉकलेट तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसे करके ले लिया। चोर ने कहा और भी चॉकलेट चाहिए? निमाई ने कहा हाँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा और भी, मुझे ढेर सारी चॉकलेट चाहिए। तो चोर ने कहा ये हमारे घर पर है, चलो हमारे घर पर, मैं हम आपको बहुत चॉकलेट देंगे। निमाई ने कहा ठीक है। तो दोनों चोरों ने निमाई को उठा लिया और उठाकर कंधे पर बिठा दिया, और कंधे पर बिठाया। निमाई तो चॉकलेट खा रहे थे, खाकर जब चॉकलेट समाप्त हो गई तो वे रोने लगे। तो ये चोर तो लेकर जा रहे थे, रोने लगे। दोनों चोरों ने सोचा कि यदि आजू बाजू में कोई सुन लेगा ये रो रहा है, तो कहा जाओ दूसरे, जिस चोर ने निमाई को गले में उठाया था उसने कहा जाओ कुछ खिलौना लेकर आओ इसके लिए, नहीं तो रोएगा तो सब लोग एकत्रित हो जाएंगे। तो चलते 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 वे अपने गांव में लेकर जा रहे थे, तो खिलौना लेकर आए, इसे खिलौना दिया। खिलौने से जी भर गया तो रोने लगे, तो कुछ खाने पीने की वस्तुएं दी। इस प्रकार से चलते चलते ये दोनों चोर चलते चलते जा रहे थे, और दोनों चोरों को लगा कि अपना गांव अब बहुत ही नजदीक आ रहा है। तो गांव नजदीक आ रहा था और इस निमाय को उठा उठा कर भी थक गए थे। अब दोनों कभी ये उठा रहे थे, कभी ये उठा रहे थे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि धन्य है बड़े बड़े मुनि और योगी, हजारों हजारों सालों से जतन करते रहते, ध्यान करते हैं, परंतु भगवान के चरण भी उसके ध्यान में नहीं आते हैं। भगवान की कृपा यह दो चोरों के ऊपर क्या हुई, साक्षात भगवान के चरण उसके सिर पर लगे हुए हैं। बहुत भाग्यशाली निकले यह दोनों चोर, परंतु भगवान की अद्भुत लीला हुई। ये दोनों चोर बहुत चले, बहुत किलोमीटर का अंतर काट दिए उस निमाय को अपने गले सिर के ऊपर बिठा कर, और घूमते घूमते उन लोगों को लगा कि अपना गांव आ गया। गांव में आकर देखा तो भगवान ने ऐसी लीला रची कि यह दोनों चोर घूमते घूम कर उसी गांव में वापस आए जहां से निमाय को उठाए थे, और गांव में एंट्री मार दी और पता चला कि ये तो जहां से हमने इस निमाय को उठाया था वहीं पर हम आ गए। और उस वक्त जब निमाय को ये चुरा कर लेकर गए थे घर पर, पता चला कि निमाय नहीं है, तो सब लोग ढूंढ रहे थे कहाँ गया निमाय, कहाँ गया। माता तो बिचारी रो रही थी कि कौन लेकर गया, तो सब लोग ढूंढ रहे थे। अब दोनों चोरों ने सोचा यदि हम इसे छोड़कर नहीं जाते हैं तो ये लोग हमें पकड़कर पीटेंगे, इसलिए जिस जगह से निमाय को उठाया था उसी जगह पर निमाय को रख दिया, और ये दोनों चोर जाने लगे। निमाय को तो खाने पीने में बहुत आनंद आ गया और उसी जगह पर छोड़ दिया चोरों ने। जब चोरों ने वहां निमाय को रखा, चैतन्य महाप्रभु को रखा, तो कुछ लोगों की दृष्टि चैतन्य महाप्रभु के ऊपर गई और कहा कि निमाय तो यहाँ खेल रहा है। तो निमाय को प्राप्त करके सब लोग बहुत खुश हुए, सुखी हुए, और कई लोगों ने प्रश्न उठाया कि निमाय हमारा निमाय घूम गया था, परंतु जिन लोगों ने निमाय को ढूंढकर हमारे वहां पहुंचाया है उसे पुरस्कार देना चाहिए। तो ये तो निकल गए थे वहां से, परंतु कुछ लोग उसे पुरस्कार देने के लिए उसके पीछे पीछे गए। जब पीछे पीछे पुरस्कार देने के लिए जा रहे थे, दूर से उस दोनों चोरों ने देखा कि पूरा गांव हमारे पास आ रहा है, लगता है हमारी पिटाई करने आ रहा है। तो ये दोनों चोर तो धूम दबाकर वहां से भागे। ये गांव वाले बेचारे पुरस्कार देने जा रहे थे, चोरों को लगा कि हमारी पिटाई करने के लिए आ रहे हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीला है, अपनी माया शक्ति से ये दोनों चोरों की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। अब ये माया जो है भगवान की अपनी निजी शक्ति है, ये योग माया और महामाया। तो भगवान अपनी लीला में योग माया का प्रदर्शन करते हैं, योग माया के द्वारा सब लोग आवृत रहते हैं, और भगवान इस योग माया से सबको आवृत करके अपनी लीला का आनंद सबको प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की बहुत बहुत लीलाएं हैं। आने वाले रविवार में आप सबको यह सब लीलाएं सुनाई जाएंगी, इसलिए आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए।